समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। इसी सुविचार के साथ आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर शुरू करते हैं आज का आज सवेरे कार्यक्रम। कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं देश दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी लेकर जिनका आपसे है सरोकार। नमस्कार, सुप्रभात। आज सवेरे के संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग फॉर यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी शेयर द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 31st ऑफ जनवरी। But let's begin with the headlines.
जी हाँ, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के आरंभ में सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण देंगी। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। वित्त मंत्री कल केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। वित्त विधेयक 2025, वक्फ संशोधन विधेयक 2024, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक और रेलवे संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयक चर्चा के लिए संसद में लाए जाएंगे। संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में सरकार ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही बजट पर भी चर्चा होगी। बजट पर चर्चा 13 फरवरी तक जारी रहेगी।
That's right. The government has announced that India is all set to launch its own safe and secure indigenous artificial intelligence model at an affordable cost. Briefing the media in New Delhi yesterday, Union Finance Minister and Electronics Information Technology Minister Ashwini Vaishnav highlighted that compared to global models costing $2.5 to $3 per hour usage, India's AI model will cost less than 100 rupees per hour after 40% government subsidy. He also highlighted that the attractive half-yearly and annual plans will further make it more affordable. Mr. Vaishnav mentioned that 18 citizen-centric applications pertaining to the agriculture sector, learning disability and climate change will be part of this AI model. The Union Minister expressed hope that the Indian AI model is likely to be ready within 6 months. On a query on privacy concerns around DeepSeek, Mr. Vaishnav informed that it will be hosted on Indian servers soon after security protocol checks so that users, coders, developers can benefit from its open source code.
और अब प्रयागराज महाकुंभ की खबरें। प्रयागराज महाकुंभ दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग आज संगम घाट का दौरा करेगा। आयोग दुर्घटना के कारण और परिस्थितियों की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशों के साथ 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हर्ष कुमार कर रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कल महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम घाट का दौरा कर क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दुर्घटना में 30 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने प्रशासन से तत्पर रहने और बेहतर तरीके अपनाने का आग्रह किया ताकि आगामी अमृत स्नान सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों में अधिकतम अधिकारियों को तैनात करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
Continuing with Mahakumbh News, District Magistrate of Prayagraj Ravindra Kumar Mandar has denied media reports about a ban on vehicle entry due to road diversions. A viral social media post claimed that vehicle entry into Prayagraj would be restricted until the 4th of February. In a video message, Mr. Mandar clarified that there will be no diversions on 31st January, 1st February and February 4th. He explained that vehicle entry will be restricted in Prayagraj only on 2nd February and 3rd February due to the Amrit Snan on Vasant Panchami.
सोशल मीडिया पे एक न्यूज तेजी से वायरल हो रही है। 4 तारीख तक के लिए प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। ये खबर पूरी तरह निराधार है। प्रयागराज कमिश्नरेट क्षेत्र में वाहनों का जो प्रवेश है वो डायवर्जन की स्कीम्स मात्र पीक डे मौनी अमावस्या को देखते हुए लगाई गई थी। 31 तारीख को, 1 तारीख को और 4 तारीख को किसी प्रकार का वाहनों में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मात्र 2 और 3 तारीख को चूंकि वसंत पंचमी का स्नान होगा तो डायवर्जन की स्कीम्स लागू होंगी।
A large number of women devotees can be seen at the Mahakumbh Mela in Prayagraj, the world's largest spiritual gathering. The Uttar Pradesh government has made special arrangements for women at the ghats. Our correspondent reports that several facilities are being provided to ensure a safe, secure and comfortable environment for the women devotees.
The security measures taken for the women and arrangement made at the ghat have instilled confidence among the women devotees to come in large numbers to attend Mahakumbh. The women police personnel deployed at the ghats are helping the elderly women devotees to take holy dip at Triveni Sangam in hassle-free manner. More than 1,50,000 toilets have been installed in the Mela campus. Talking to Akashvani News, several women devotees appreciated the government for the arrangement made for them, including changing rooms and separate toilets.
My name is Rinku Karmakar. I am from West Bengal. की हल्दिया से आ रही हूँ। यहाँ का व्यवस्था मुझको बहुत अच्छा लगा है। स्नान करने का तो बहुत बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर किया है और लेडीज की कपड़े बदल की अच्छा से इंतजाम कर दिया है सरकार ने। यहाँ का व्यवस्था बेहतर व्यवस्था है।
मेरा नाम सीमा गुरनानी है, नागपुर से, महाराष्ट्र से। यहाँ की बहुत अच्छी सुविधा की गई है। यहाँ पे गंगा स्नान जो हम करने आए हैं, जो लोग बोल रहे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मतलब महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम वगैरह सारी चीज की सुविधाएं हैं।
Along with men, female priests are also performing Ganga Aarti at Sangam Ghat. The women are also playing a key role in managing camps, organizing community kitchens and facilitating pilgrim services. With Dipendra Kumar, Aman Yadav, Akashwani News, Prayagraj.
महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:30, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।
8 more hostages, including 3 Israeli and 5 Thai nationals held by Hamas in Gaza, have been released amid chaotic scenes as part of the ceasefire deal with Israel. This is part of the third round of the hostage prisoner swap under the ceasefire agreement between Palestinian groups and Israel, aimed at de-escalating the conflict in the region. The hostages were surrounded by large crowds as they walked to Red Cross vehicles. Yesterday's releases brings the total number of freed hostages to 15 since the ceasefire began on 19 January. In the first round of releases, 7 hostages were freed, including 4 soldiers and 3 civilians, all women. However, 82 hostages are still being held.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन एयरलाइंस विमान दुर्घटना में किसी के जीवित न बचने की पुष्टि की है। 64 लोगों को ले जा रहा यह विमान 3 सैनिकों को ले जा रहे आर्मी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकरा गया था। श्री ट्रंप ने कहा कि प्रशासन दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा दोबारा न हो। उन्होंने खराब वायु सुरक्षा मानकों के लिए बराक ओबामा और जो बाइडेन प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कार्यवाहक संघीय उड्डयन प्रशासन के अधिकारी के रूप में क्रिस रोशेलियो की नियुक्ति की भी घोषणा की।
The India Meteorological Department IMD has forecast dense to very dense fog conditions during night and early morning hours in isolated pockets of Uttar Pradesh till tomorrow. According to IMD, dense fog conditions are likely to prevail during night and early morning hours in isolated pockets of Gangetic West Bengal today and sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Similar conditions are expected in Bihar, Odisha, Assam and Meghalaya till Sunday. Further, the IMD predicted a gradual rise in minimum temperatures by 2 to 3 degrees Celsius over northwest, east, central and west India during the next 3 days.
और अब खेल जगत की खबरें जान लेते हैं हमारे सहयोगी चिराग झा से।
Nikki Prasad-led Indian side has been dominant in all the departments throughout the tournament, with batters and bowlers contributing equally. The women in blue will aim to reach final scheduled on Sunday. On the other hand, in men's cricket, India will face England in the fourth T20 International at the Maharashtra Cricket Association Stadium in Pune this evening. Surya Kumar Yadav-led home side are currently leading the five-match series 2-1. Moving towards Hockey India League HIL, where semi-final matches are scheduled for today. Sri Rar Bengal Tigers will face Tamil Nadu Dragons at 6 p.m. while JSW Surma Hockey Club will take on Hyderabad Tufans at 8:15 p.m. at the Birsa Munda International Hockey Stadium in Rourkela, Odisha. Last we have from Indian Super League ISL football, where Kerala Blasters FC defeated Chennai and FC by 3-1 at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai last night. This is the first time when Kerala Blasters FC registered an away win against Chennai and FC in the league. Moreover, Koro Singh scripted history for Blasters as he become the second youngest goal scorer in the competition. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
और प्रमोद, आज सवेरे में अब वक्त हुआ है प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरों का. तो सबसे पहले प्रमोद, आप बताएं चेन्नई की क्या खबरें आपके पास?
जी बिल्कुल, चेन्नई का ही बताता हूँ. Tamil Nadu will establish a hub and spoke model networking private and government hospitals across the state for early diagnosis and treatment of cancer. Health Secretary Supriya Sahu said that besides the growing burden of cancer, mall distribution is also a concern. Noting that the state aims to have a mapping of cancer soon, she said that the Aringar Annai Hospital at Kanchipuram is the apex institution of the state, and Adyar Cancer Institute holds the registry. The third cancer center for Apollo Hospitals was inaugurated at Vanagaram. The state has 5 regional cancer centers, 12 multi-specialty hospitals with Department of Oncology, 10 hospitals with linear accelerators, and 9 other centers with advanced equipment for the diagnosis of cancer. Sticking on with Chennai news, the Chennai Metro Rail has limited announced the discontinuation of monthly parking passes at all metro stations from February 1st due to increasing demand for parking spaces. Parking will now be available on a first-come, first-served basis. Monthly passes purchased in this month will remain valid till expiry. It is said that some car owners lacking parking space in their residential areas using the CMRL's monthly parking passes, which range from 250 to 3,000 based on vehicle type and commuter frequency. But with daily metro ridership exceeding 2.8 lakh passengers, the limited parking capacity of 16,700 two-wheelers and 3,500 cars led to congestion, particularly at smaller stations. अब मुंबई से क्या खबर है मुकेश, बताइए.
जी हाँ, मुंबई की खबरों में सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन की कार्यालय का उद्घाटन किया. श्री फडणवीस ने कहा कि मराठी साहित्य सम्मेलन हर मराठी व्यक्ति के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की स्थापना के बाद पहली बार देश की राजधानी में ये भव्य आयोजन हो रहा है. 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 21 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा. और बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में माघी गणपति उत्सव से पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के निर्माण और विसर्जन पर प्रतिबंध बरकरार रखा है. मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने महाराष्ट्र में स्थानीय अधिकारियों को आगामी उत्सव से पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों को लागू करने का निर्देश दिया. बृहन्मुंबई नगर निगम, 6 अन्य नगर निगमों और राज्य की 4 नगर परिषदों को निर्देश जारी किए गए हैं. इस साल माघी गणपति जयंती 1 फरवरी को है. और तटरक्षक बल के पश्चिमी क्षेत्र के कमांडर महानिरीक्षक भीष्म शर्मा ने कहा कि भारतीय तटरक्षक ने 2024 में 37,217 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ी जब्ती है. 1 फरवरी को 49वें तटरक्षक स्थापना दिवस से पहले श्री शर्मा ने कल कहा कि अंडमान सागर में लगभग 6,000 किलोग्राम मादक पदार्थों की महत्वपूर्ण जब्ती ने इस संख्या में बहुत योगदान दिया है. प्रमोद, आप बताएं कि बेंगलोर से क्या खबरें आपके
जी
पास?
बिल्कुल. The chairperson of the National Medical Commission, Dr. B. N. Gangadhar, has said that rehabilitation of the persons with disability must remain affordable for the benefits to the reach out to the majority. He was speaking after inaugurating the 53rd annual conference of the Indian Association of Physical Medicine and Rehabilitation, IAPMR, in Nimhans, Bengaluru, yesterday. He highlighted the role of multidisciplinary approach to rehabilitation and the need to have an integrated rehabilitation approach. The conference is hosted by the Department of Neurological Rehabilitation, NIMHANS, under the aegis of the Kaveri Association of Rehabilitation Medicine, KARM, or KARM, which is the Karnataka chapter of IAPMR. The conference is being attended by over 300 delegates, including many eminent national and international speakers in the field of physical medicine and rehabilitation.
और अब कोलकाता की खबर. भारतीय चाय बोर्ड ने उत्तरी पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के लिए नए चाय सीजन की घोषणा की है. एक अधिसूचना में चाय बोर्ड ने कहा कि तराई और द्वार्स की कच्ची चाय की पत्तियां 17 फरवरी और पहाड़ी इलाकों की कच्ची पत्तियां 27 फरवरी से तोड़ी जाएंगी. पिछले कुछ वर्षों से अच्छी गुणवत्ता वाली पत्तियां नहीं मिल पा रही हैं. चाय बोर्ड इस मामले की जांच कर रहा है.
And in Hyderabad, to enhance the participation of youth in Create India Challenge competitions as part of the World Audiovisual Entertainment Summit Waves, the Ministry of Information and Broadcasting, in collaboration with Dancing Atoms, held a workshop for students in the Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University yesterday. Addressing the workshop, Unlocking Storytelling Workshop, writer, director of Dancing Atoms, a visual animation studio, Saraswati Buyala said the students need to craft stories that resonate with audiences and industry professionals, and added, only by unleashing their inner storyteller, they would be able to ignite India's creative future. The CIC has witnessed an overwhelming response from aspiring and professional creators from India and across the globe. A total of 31 challenges, handpicked and curated, span a wide range of creative domains of music, advertising, gaming, animation, VFX, filmmaking, comics, XR/VR, digital, and social media. Currently, 25 challenges are still open for participation from a wide range of participants, ranging from amateur creators to professionals.
और अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की खबरें. महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर केंद्रित एक विशेष प्रदर्शनी का कल नई दिल्ली के राजघाट स्थित राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में शुभारंभ हुआ. इसका विषय जर्नी ऑफ द महात्मा थ्रू हिज ओन डॉक्यूमेंट्स है. इस प्रदर्शनी में महात्मा गांधी की दुर्लभ तस्वीरों, आधिकारिक दस्तावेजों, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और क्लिपिंग तथा व्यक्तिगत पत्राचार का संयोजन किया जा रहा है. राजधानी के ऐतिहासिक लाल किला मैदान में भारत पर्व महोत्सव में बड़ी संख्या में दर्शक गणतंत्र दिवस परेड की झांकियां देखने के लिए पहुंच रहे हैं. इस वर्ष ये पर्व देखो अपना देश विषय पर आधारित है. भारत पर्व महोत्सव में 34 राज्यों के पर्यटन पवेलियन और 24 मंत्रालयों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए हैं. दर्शक दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक इस महोत्सव का आनंद ले सकते हैं. 6 दिवसीय इस पर्व का आज समापन होगा. और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से शुरू होगा. इस वर्ष मेले का विषय हम भारत के लोग है. 9 दिवसीय मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी. इस वर्ष मेले का मुख्य देश रूस है. इसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं. और दिल्ली नगर निगम की पहली महिला वॉकेथॉन पिंकथॉन कल रोहिणी सेक्टर 5 के निगम कार्यालय से शुरू हुई. पिंकथॉन सुबह 7:30 बजे से आरंभ होगी. इस कार्यक्रम से लोकतंत्र में महिला शक्ति को प्रदर्शित किया जाएगा. निगम ने लोगों से 5 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे मुकेश कुमार और वीसी प्रमोद के साथ. आज सवेरे में वक्त हुआ है मौसम का हाल जानने का. तो प्रमोद, सबसे पहले दिल्ली का मौसम जान लें.
जी बिल्कुल.
तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. मुंबई में भी आज धुंध छाई रही और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. और कोलकाता में भी आज सवेरे के समय धुंध रही और बाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. तो प्रमोद, ये हुई बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की. आप बताएं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा रहेगा मौसम?
जी बिल्कुल. Chennai is expected to have fog or mist in the mornings and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and the maximum will be around 32 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 17 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 18 degrees and a maximum of 31 degrees Celsius.
और आइए अब नजर डालते हैं इतिहास पर और पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ। आज 31 जनवरी है। 1958 में आज ही के दिन अमेरिका ने पहले भू उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।
That's right, 31st January 1968, Nauru, an island country located in the Pacific Ocean, gained independence from Australia.
1966 की बात करें तो आज ही के दिन सोवियत संघ ने लूना कार्यक्रम के अंतर्गत मानव रहित लूना 9 स्पेस क्राफ्ट का प्रक्षेपण किया था। 1971 में आज ही के दिन पूर्व और पश्चिम बर्लिन के बीच 19 साल के अंतराल के बाद फिर से टेलीफोन सेवा बहाल हुई थी।
That's right, and in 1958, the United States entered the space race with the launch of its first artificial satellite, Explorer 1.
2007 की बात करें तो आज ही के दिन भारतीय स्टील कंपनी टाटा एंग्लो डच इस्पात कंपनी कोरस के अधिग्रहण के बाद विश्व की पांचवी सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी।
That's right, in 1961 on this day, Ham, the chimpanzee, became the first primate in space when he flew on the Mercury's Redstone 2 mission. And the Treaty of Lyon ended the Italian Wars of 1499 when King Louis XII of France gave Naples to Ferdinand II of the Aragon in 1504. The treaty was signed on 31st January 1504. And 31st Jan 1865, the House of Representatives passed the 13th Amendment to the United States Constitution, which abolished slavery. And in 1996, Asia's first sports university is inaugurated in Pune.
तो ये बात हुई इतिहास की और अब याद कर लेते हैं उन महान हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले तमिल भाषा के सुविख्यात साहित्यकार, उपन्यासकार, लघु कहानी लेखक, पत्रकार, व्यंग्यकार, यात्रा लेखक, नाटककार और पटकथा लेखक अकीलन को हम याद कर रहे हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। अकीलन का पूरा नाम पेरुंगलूर वैद्यलिंगम अकीलंदम यानी पीवी अकीलंदम था। उन्होंने अपना अधिकांश लेखन कार्य अकीलन के नाम से किया और इसी नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी वो जाने जाते हैं। अकीलन ने कुछ ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं। वर्ष 1961 में प्रकाशित वेंगियन मैंदन उनका पहला ऐतिहासिक उपन्यास था जिसे 1963 में साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया था। फिर 1965 में कायल विषि निकला, इस पर उन्हें 1968 में तमिल विकास परिषद का पुरस्कार मिला। अकीलन का तीसरा ऐतिहासिक उपन्यास है वेत्री तिरुनगर जो 1966 में प्रकाशित हुआ और 1973 में प्रकाशित उनकी रचना एंगे पोगिरोम एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें समाज और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण किया गया है। अकीलन को इसी कृति पर 1976 में राजा अण्णामलय चेट्टियार पुरस्कार भी मिला था।
वेरी गुड मुकेश, मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आपने प्रोनाउंस किया ये तमिल नाम, बहुत ही परफेक्ट थे। कंटिन्यूइंग विद तमिल, वी हैव अनदर एक्टर कॉल्ड नागेश
जी।
अगर आपने नागेश के फिल्म्स देखे हैं
जी बिल्कुल,
तो महमूद ने काफी सारी फिल्म्स में नागेश को एक तरह से लिटरली कॉपी किया।
बिल्कुल।
एंड ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। ही वॉज बॉर्न चेयूर कृष्णराव नागेश्वरम। ही वॉज बॉर्न ऑन 27 सेप्टेम्बर 1933 एंड ही वॉज एन इंडियन एक्टर एंड अ कमेडियन मोस्टली रिमेंबर्ड फॉर हिज कॉमिक रोल्स इन तमिल फिल्म्स ड्यूरिंग 1960s, 70s एंड 80s। ही एक्टेड इन ओवर 1000 फिल्म्स परफॉर्मिंग इन अ वैरायटी ऑफ रोल्स एज कमेडियन, लीड रोल, सपोर्टिंग एक्टर एंड एंटेगनिस्ट। In fact, the best thing was that he got critical acclaim for his role as Joseph in Kamala Hassan's Avvai Shanmugi, and we have a song from that movie.
Avvai Shanmugi.
और अब हम याद कर रहे हैं जानी मानी गायिका सुरैया को। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख और हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका थीं। 40वें और 50वें दशक में उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना योगदान दिया। अदाओं में नजाकत, गायकी में नफासत की मलिका सुरैया जमाल शेख ने अपने हुस्न और हुनर से हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक नई इबारत लिखी। वो पास रहें या दूर रहें, नुक्ताचीनी, गमे दिल और दिले नादां, तुझे हुआ क्या है जैसे गीत सुनकर आज भी जहन में सुरैया की तस्वीर उभर आती है। तो क्यों ना अपने श्रोताओं को सुरैया के गाने सुनाएं।
जी बिल्कुल।
तू मेरा चांद, मैं तेरी चांदनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी,
मैं तेरा राग तू मेरी रागनी हो।
नहीं दिल का लगाना कोई दिल लगी, कोई दिल लगी।
और सुरैया जब 6 वर्ष की उम्र की थी तो बॉम्बे में यानी मुंबई में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी के लिए बच्चों के कार्यक्रम में वो गा रही हैं और राज कपूर और मदन मोहन उनके सहकलाकार थे। वास्तव में उन्होंने पहली बार आकाशवाणी से परिचित कराया गया और दोनों बाद में एक वयस्क रूप में उनके साथ जुड़े और फिल्मों में उनके गायक और उनके संगीत निर्देशक के रूप में उनके साथ रहे। आकाशवाणी में जुल्फिकार अली बुखारी उस समय बम्बई रेडियो स्टेशन के निदेशक हुआ करते थे और जैसे ही संगीत निर्देशक नौशाद अली ने सुरैया की आवाज़ सुनी उन्होंने उन्हें अब्दुल रशीद कारदार की फिल्म शारदा में मेहताब के लिए गाने के लिए चुना था और इस समय उनकी उम्र केवल 13 वर्ष थी। तो क्यों ना सुरैया का एक और गाना सुने
जी। Today is also the death anniversary of Krishan Niranjan Singh, popularly known as K.N. Singh. He was a prominent villain and character actor. He appeared in over 200 films and had a long career stretching from 1336 to the late 1980s. Turning his energy to sports, K.N. Singh came to excel in the javelin throw and the shot put. He was selected to represent India at the 1936 Berlin Olympics before circumstances compelled him to go to Calcutta, where he met Prithviraj Kapoor, who introduced him to director Debiki Bose, who offered him a debut role in the film Sunehra Sansar. Dekhiye Mukesh, ओलंपिक शॉटपुट से लेके फिल्मों में आ गए।
बिल्कुल। और केएन सिंह के बारे में एक और बात बताने चाहूंगा कि वो अपने पिता की तरह वकील बनना चाहते थे लेकिन अप्रत्याशित घटनाचक्र उन्हें फिल्मों की ओर खींच ले गया और मंझे हुए अभिनय के बल पर केएन सिंह एक चरित्र अभिनेता बने और विलेन के रूप में स्थापित हुए। सुनहरा संसार जो कि 1936 में प्रदर्शित हुई इनकी पहली फिल्म थी और 1936 में ही बागवान में इनका नेगेटिव रोल था। जनता को ये रोल बहुत भाया और लंबे समय तक विलेन के रूप में उनके नाम पर मोहर लग गई।
That's right, and उनको बहुत ख्याति मिली विद राज कपूर आवारा
जी,
जिसमें उनकी आवाज का जो जादू है वो हमारे पास है, अब सुनेंगे।
बिल्कुल सुनाते हैं।
तो शराफत बाजार में बिक रही है और तुम उसके खरीदार हो, मगर शरीफ बनने के लिए रुपया चाहिए, 1,000 रुपया, और इस 1,000 रुपए के लिए तुम्हें हमारे साथ चोरी करनी पड़ेगी, टाका डालना पड़ेगा, मुमकिन किसी का खून करना पड़े।
In the last years of his life, Singh became completely blind and had a fall in his home after which he was almost bedridden. He died in Mumbai on 31st January 2000, aged 91.
और अब याद करते हैं हिंदी के निबंधकार और साहित्यकार पद्म नारायण राय को। आज उनकी पुण्यतिथि है। काफी लंबे समय तक नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक रहे। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में जन्मे पद्म नारायण राय ने नागरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादन किया। इस उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंध इस प्रकार है। उनमें शिक्षा का सुधार, वैदिक स्वर, शब्द शक्ति, साहित्य की आत्मा, भक्तिभाव की अभिनव मीमांसा, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी पढ़ाते समय पद्म नारायण राय बहुत तन्मय हो जाते थे और 31 जनवरी 1968 को काशी विश्वविद्यालय में उनका निधन हो गया था।
Today is also the birth anniversary of Major Somnath Sharma. He was an Indian military officer and the first recipient of India's highest military decoration, the Paramveer Chakra, which he was awarded posthumously. Sharma was commissioned into the 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment, and he died while fighting against the repulsive Pakistani infiltrators on 3rd November 1947. Let's listen to one of his memories.
ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, बोल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाए।
पद्मश्री, साहित्य अकादमी और सरस्वती पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित जानी मानी पंजाबी की प्रतिष्ठित बहुचर्चित लेखिका दलीप कौर तवाना की आज पुण्यतिथि है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए दलीप कौर तवाना को 2004 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और उनको 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए मुकेश कुमार और वीसी प्रमोद को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।
That's right. Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, a Hindi news bulletin followed by morning news in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day.
Namaskar.